भो मित्रगण, नमो नमः। रेडियो मधुबनस्य पठामि संस्कृतं कार्यक्रमः प्रारम्भं करोमि। शृण्वन्तु अष्टम अध्यायः, अर्थात् मित्रगण आप यह आठवां अध्याय सुने। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो हे अर्जुन, इस बात को समझो कि मेरा अपना जो धाम कहलाएगा वह परम धाम होगा, और वह इन सभी लोकों से परे है। और वह मेरा परम धाम कैसा है? तो हे पार्थ सुनो, कई विद्वानों ने पहले ही से कह रखा है कि वह जो मेरा परम धाम है वह अव्यक्त है, अक्षर है, ऐसा आहुहु ऐसा कहा गया है। और इस प्रकार उस परम धाम की गति को, परम गति को जो प्राप्त कर लेता है, सद्गति को जो प्राप्त कर लेता है, यम प्राप्य जो उसे पा लेता है, वह न निवर्तन्ते, उसे वापस नहीं आना पड़ता है, वह पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। तो तुम भी प्रयास करो कि उस परम धाम को तुम पा सको, और इस जीवन की यात्रा के पश्चात मृत्यु को तरते हुए उस परम धाम को पा सको, तो फिर तुम्हें इस मृत्यु लोक में वापस नहीं आना पड़ेगा। पुरुषः सपरः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। और अंतिम बात सुनो हे अर्जुन, कि वह जो पुरुषः सपरः, वह जो परम पुरुष है, वह जो परम तत्व है, उसे कैसे पाया जाता है? भक्त्या लभ्यति अनन्यया, अगर अनन्य भक्ति करो तो उसकी प्राप्ति हो जाती है। और उसका आगे वर्णन बताया है, यस्यांत स्थाने भूतानि, जो सारे भूत प्राणियों के अंतस्थ होता है, उनके अंदर वह समाहित होता है, उनके अंदर वह वास करता है, अंतस्थः, वो उनके अंदर बसा रहता है। और येन सर्वमिदं ततम्, वह सारे भूत प्राणियों के अंदर भी है, और वह इस पूरे ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड से बाहर भी चराचर में व्याप्त भी है। तो वही तुम्हारे अंदर भी है, वही तुम्हारे बाहर भी है। उसे अगर हम अनन्य भक्ति से पा लेते हैं तो फिर पुनर्जन्म की ओर वापस हम नहीं आते हैं, बल्कि उस परम पुरुष को, परम दिव्य तत्व को, परम धाम को, परम भाव को हम पा सकते हैं। आगे कहते हैं, यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अर्थात् यत्र काले प्रयाता योगिनः अनावृत्तिम अथवा आवृत्तिम यान्ति तं कालं अहम् वक्ष्यामि। अर्थात् जिस काल में मृत्यु को पाने पर योगी पुरुष या तो अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुनर्जन्म नहीं होने वाली अवस्था को प्राप्त होते हैं, या फिर आवृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुनर्जन्म होने की अवस्था को प्राप्त होते हैं, ऐसे काल के बाबत, तम कालम ऐसे काल के बाबत, हे भरतर्षभ, हे अर्जुन, वक्ष्यामि, मैं वह तुम्हें बताता हूँ। तो कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु समय किस प्रकार की अवस्था हो तो पुनर्जन्म होता है अथवा नहीं होता है। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। तो ये दो अवस्थाओं के विषय में बताया है। एक अवस्था है जिसका वर्णन इस प्रकार है कि उस अवस्था में अग्नि है, ज्योति है, अह अर्थात दिन है शुक्लः अर्थात शुक्ल पक्ष है, और उत्तरायण के 6 मास हैं। और दूसरी अवस्था वैसी बताते हैं जब वहाँ धूम अर्थात धुआं या जो सब कुछ अस्पष्ट ऐसी अवस्था है, रात्रि है, कृष्णः अर्थात कृष्ण पक्ष है और दक्षिणायन के 6 मास हैं। इस प्रकार के 2 कालों का वर्णन किया गया है। और ये कहते हैं कि पहले प्रकार के काल में जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, उस काल में अगर मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। ब्रह्मविद जन ये कहते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले लोग ये कहते हैं कि ऐसे काल में अगर कोई व्यक्ति मृत्यु की ओर प्रयाण करे तो वह उस परम तत्व को पा लेता है। दूसरे प्रकार का जो काल है उसमें तत्र चांद्रमसम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। तो दूसरे प्रकार के काल में वहाँ चंद्रमा की ज्योति है, वहाँ क्षीण प्रकाश है, तो ऐसी अवस्था में मृत्यु को पाने वाले व्यक्ति उन्हें पुनर्जन्म में वापस लौटना पड़ता है। इसी बात को विनोबा जी बहुत सुंदर प्रकार से इसकी विवेचना करके समझाते हैं। विनोबा जी का मानना है कि यहाँ यह सारा वर्णन जो है वो किसी खास दिन का, किसी खास मुहूर्त का वर्णन नहीं है, बल्कि यह हमारे मन की स्थिति को दर्शाने वाली अवस्था का वर्णन है। हमारा मन ऐसा हो जो अग्नि की तरह पवित्र ज्योतिर्मय हो, दिन की तरह उसमें उजाला हो, संशय हमारे मन में ना हो, निर्मलता हो, शुक्ल पक्ष के आकाश की तरह निर्मल आकाश हो, प्रकाशमान आकाश हो, हमारा चित्त निर्मल हो और हमारे मन में भगवत भक्ति भरी हुई हो, उसी से हमारे हृदय का आकाश प्रकाशित हो, तो ऐसे काल में यदि हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो फिर पुनर्जन्म की ओर वापस नहीं आना पड़ता है। तो विनोबा जी कहते हैं कि यहाँ जो शब्द है अग्नि, यह अग्नि यज्ञ का द्योतक है और यज्ञ कर्म का द्योतक है। और जैसा कि इस अध्याय के आरंभ में ही बताया गया कि वह जो परम तत्व है वह हमारे देह के भीतर बैठकर हमसे यज्ञ करवाता है। तो अग्नि शब्द जो है वह उस यज्ञ का प्रतीक है, कर्म का प्रतीक है। और इस प्रकार कर्म करते हुए मृत्यु हो, सूर्य की कृपा हो, सूर्य की कृपा दर्शाने के लिए उत्तरायण शब्द का प्रयोग हुआ है, तो सूर्य की कृपा हो अर्थात बुद्धि, हमारी बुद्धि की प्रभा अंत तक फैली हो, बुद्धि क्षीण ना हुई हो, बुद्धि मलिन ना हो और मन निर्मल हो। जब शुक्ल पक्ष कहा गया है तो शुक्ल पक्ष का चंद्र द्योतक होता है प्रेम का, भक्ति का, परोपकार, दया इत्यादि भावनाओं का। तो शुक्ल पक्ष से उन भावनाओं का विचार किया गया है। इस प्रकार जब मन की अवस्था हो तब यदि मरण हो तो वह परम संतोष की बात है। इसी प्रकार यदि दक्षिणायन हो, धुआं हो, अंतर्बाह्य अंधकार हो, आकाश पर कुहासा छाया हो और हमारा स्वतः मन संशय के आवरण से आच्छादित हो, ऐसी अवस्था में अगर मृत्यु हो तो वह फिर से हमें पुनर्जन्म की ओर लौटाती है। आगे कहते हैं, शुक्ल कृष्णे गति ये ते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। अर्थात यह शुक्ल और कृष्ण की गति हे अर्जुन मैंने तुम्हें बताई, इसमें से एक अवस्था को प्राप्त करने वाला मृत्यु के पश्चात अपनी निरंतरता को बनाए रखता है और दूसरी अवस्था को प्राप्त करने पर मनुष्य को मृत्यु के पश्चात वापस पुनर्जन्म में लौटना पड़ता है। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। लेकिन इन दोनों रास्तों के बाबत जानने के पश्चात भी श्रुति अर्थात रास्ते मार्ग, तो दोनों मार्गों को जानने के पश्चात भी जो योगी जन है वह व्याकुल नहीं होते, वह इस बात की चिंता नहीं करते कि मेरी मृत्यु के समय का काल कैसा होगा। वह इस बात की चिंता करते हैं मेरी मृत्यु के समय मेरे मन की अवस्था, मेरे चित्त की अवस्था, मेरे चेतना की अवस्था कैसी होगी, क्योंकि पुनर्जन्म का होना या न होना यह चेतना पर निर्भर है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टं अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। तो भगवान आगे कहते हैं कि वेद करने से, यज्ञ से, तप से, दान से जो भी पुण्य फल मिलता हो वे सारे पुण्य फल उनसे भी परे जा करके अत्येति उन सबों को लांघ कर उस सारे पुण्य से परे जाकर जो व्यक्ति इस तत्व को जानता है, अपनी चेतना में बसे हुए इस यज्ञ कर्म को जानता है, परम तत्व को जानता है, उसे ही वह परम स्थान मिलता है जो कि सभी का मूल है, शाश्वत है और परम धाम है। तो मित्रों, इस प्रकार आज हमने 8वां अध्याय भगवद गीता का समाप्त कर लिया। इस अध्याय की बातें बहुत ही गूढ़ हैं और इन्हें समझने के लिए बहुत चिंतन करना पड़ेगा, वारंवार विचार करके चिंतन करते हुए इसे समझना पड़ेगा। और जैसा कि इसका रहस्य बताया गया है कि केवल बुद्धि के चिंतन से हम थोड़ी दूर तक इस मार्ग पर चल सकते हैं, किंतु अंततो गत्वा इस मार्ग की पूर्णता के लिए हमें बुद्धि से परे जा करके अनुभूति की आवश्यकता होती है, और वह अनुभूति पाना उसके लिए चित्त की निर्मलता का प्रयास करना और चित्त में भक्ति का प्रयास करना यह उन सभी योगियों का कर्तव्य है जो इस मार्ग को पाना चाहते हैं। तो मित्रों, आज हम यहाँ समाप्त करते हैं। तुम सुनते रहो रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहो। नमस्कार।